नीलेश खुराना एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट और प्रोफेसर है, और उसके पास एक ऐसी रिसर्च है जिसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, और नीलेश को काबू में करने के लिए उसकी कमजोरी के ऊपर वार करते हैं। कथा जो ना सिर्फ नीलेश की मोहब्बत है बल्कि उसकी स्टूडेंट भी है। लेट मी इंट्रोड्यूस साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर नीलेश खुराना, एज 29 ईयर्स। डॉक्टर नीलेश खुराना PhD वाला डॉक्टर, MBBS वाला नहीं। उम्र 29 साल, हाइट 6'3", बेहद हैंडसम और मस्कुलर जाइंट बिल्ड का ग्रीक गॉड। उसकी गहरी पीली शेर जैसी आंखें उसे किसी शिकारी जैसी लुक दे रही थी। कथा तिवारी, एज 21 ईयर्स, MSc स्टूडेंट। कथा सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट, उम्र 21 साल, हाइट 5'4", लंबे सिल्की बाल जो उसकी कमर तक आते थे, रंग गेहुआ, तीखे नैन नक्श जो उसे बहुत अट्रैक्टिव लुक देते हैं। ये शहर बहुत बदल गया है। 4 साल पहले जिस शहर को मैंने छोड़ा था उससे बिल्कुल अलग था। बेशक बदलाव पॉजिटिव और मीनिंगफुल डायरेक्शन में है, हर जगह बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। हालांकि मैं हर न्यूज़ पर नज़र रखता हूँ, लेकिन आंखों के सामने एक्चुअल सीन को देखना चौक और चीज़ जैसा है, रिधान कार से बाहर देखते हुए सोच रहा था। सर, क्या मैं आपको खुराना हाउस छोड़ूं या आपके अपने पेंट हाउस में ले जाऊं? उसके ड्राइवर महेश की आवाज़ ने उसे ख्यालों की डोर से बाहर खींच लिया। मेरे पेंट हाउस में ड्रॉप करो, रिधान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सर, क्या मैं खुराना हाउस से खाना यहाँ लाऊं या आपके लिए कुछ पकाऊं? आप फ्लाइट के थकान से थके होंगे सर, कल मैंने सारा ग्रॉसरी का सामान भर लिया है और घर की सफाई भी करवा दी है, बड़े साहब का हुक्म था, महेश ने उसके बैग और सामान को घर के अंदर रखते हुए पोलाइटली कहा। अगर आप चाहें तो मैं आगे की कहानी भी साथ में लिख सकता हूँ। क्या नील का अतीत इस शहर से जुड़ा है? क्या कोई खास वजह है जो उसे वापस खींच लाई? मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और ये भी ले लो। रिधान ने उसे कुछ पैसे दिए और घर में एंटर किया था। खैर, ये पेंट हाउस पहले जैसा ही है, बहुत ज़्यादा साफ और ऑर्गेनाइज दिख रहा था। रिधान ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और सोफे पर बैठ गया था, और अब तक जो लाइफस्टाइल से वो जीता आया था उस पर गौर करने की कोशिश कर रहा था। और जब नील पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसके लाइफ में सिर्फ वो खुद है, केमिस्ट्री है और उसका काम है। थीसिस, रिसर्च पेपर्स, एक्सपेरिमेंट्स, डिग्रीज, सेमिनार्स, लेबोरेटरीज, कॉन्फ्रेंसेज, अवार्ड्स, यही रिधान की लाइफ थी। अब नील को यह एहसास हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी का हर पल सिर्फ काम और उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। क्या वो अपने इस पैटर्न से संतुष्ट है या फिर कुछ और ढूंढ रहा है? नील का बचपन हमेशा से ही कुछ अलग था। उसे तारे, ब्रह्मांड और केमिकल से इतनी अजीब आकर्षण थी कि वो इनसे बाहर की दुनिया को नहीं देख पाता था। उसकी दुनिया बस इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी। यही वजह थी कि उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। उसके लिए ये सिर्फ एक पेशा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से अपनी पहचान और अस्तित्व था। नील को ये अच्छी तरह से पता था कि उसका इस काम में इतना डूबा रहना उसे अलग अलग तरह के टैग दिलवाता है। पागल, हार्टलेस, वर्कहॉलिक, इंट्रोवर्ट, एंटी सोशल, घमंडी, लोग उसे नहीं समझते थे, और शायद वो खुद भी कभी इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि क्यों बाकी लोग इसे समस्या मानते हैं। वो सोचता था कि ये उसकी दुनिया है और इस दुनिया में उसकी लाइफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और करियर है। भावनाएं, रिश्ते, प्यार, ये सब उसके लिए एक तरफ की बातें थी जिनका कोई असल मायने नहीं था। सामाजिक मेल जोल, पार्टियां और छोटी मोटी बातें, ये सब उसे सिर्फ तनाव देती थी। उसके लिए इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ उसके अपने विचार और उसके काम थे। कल नील को उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में शामिल होने जा रहा था जिसे उसने अपने हाथों से डिजाइन किया था। हालांकि इसे संभव बनाने में उसके ताया जी, चाचा और मौसाजी का बड़ा योगदान था। उनका सपोर्ट और उनके साथ मिलकर काम करने से ही वो MS यूनिवर्सिटी को हकीकत बना सका था। ये सफर नीलेश के लिए एक नया कदम था, एक नया मील पत्थर। लेकिन क्या वो इसे सिर्फ एक और करियर की सीढ़ी समझेगा या उसकी जिंदगी में इस नए अध्याय का कुछ और मतलब होगा? अगले दिन सुबह नील आज यूनिवर्सिटी में जल्दी पहुंच गया ताकि एनालाइज कर सके कि काम कैसे चल रहा है, और उसे मानना पड़ा था कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के प्रबंधन में बहुत बढ़िया काम किया था। सर, इस तरफ ये काम अभी भी चल रहा है, ये इस महीने तक पूरा हो जाएगा, एडमिन ने उसे यूनिवर्सिटी के दूसरे पार्ट्स दिखाए थे। अच्छा काम अजीत, ठीक है, मैं बाद में और इंस्पेक्ट करूंगा, मुझे मेरे कमरे में एक कप कॉफ़ी भेजो, नील ने उसकी तारीफ की और अपने केबिन की ओर बढ़ गया था। नील स्टूडेंट्स की फाइलों और एजुकेशन डेटा को देख रहा था जब अचानक 50 के दशक का एक आदमी कमरे में एंटर करता है। सर, मैं प्रोफेसर परीक्षित मेहता हूँ, मैं मैकेनिज्म फैकल्टी से हूँ, हे, आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने अपने दांत दिखाए थे। प्लीज टेक अ सीट, नील ने अपने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया था।
सर, आज एमएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का दूसरा दिन है। इस सेमेस्टर में उनके पास फिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी है और हम सभी जानते हैं कि इस फील्ड में आपसे बेहतर कोई नहीं है, इसीलिए मैं सुझाव दे रहा था। मेरा मतलब है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर, अगर आप उनकी क्लास लेंगे तो। हे, नील को समझ नहीं आया कि वो क्यों हकला रहा है। प्लीज डोंट कॉल मी सर, आप एक्सपीरियंस और एज दोनों में मुझसे बहुत बड़े हैं, खुद को कंफर्टेबल रखें। और मैं इस सेमेस्टर में कोई भी क्लास लेने की प्लानिंग नहीं बना रहा था, नील ने अपना ध्यान फाइलों पर फोकस करते हुए उसे इन्फॉर्म किया था। लेकिन सर, मेरा मतलब है डॉक्टर खुराना, मैं चाहता हूँ कि उन्हें आज के टाइम के सबसे अच्छे माइंड से पढ़ाया जाए। आपके पास जो पेटेंट है वे असाधारण से परे हैं, आपके द्वारा इस सब्जेक्ट के बारे में उन्हें नॉलेज दिया जाना उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। प्लीज कम से कम एक क्लास तो दें, वो थका हुआ सांस छोड़ता है। ठीक है, चूंकि आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं इसे आजमा कर देखूंगा, इसे पी लीजिए। नील ने उसे पानी का ग्लास दिया और वो उसे एक ही बार में पी गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू, फिर मैं स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। वो बाहर चला जाता है। नील सारे सिलेबस को एक बार देखता है ये देखने के लिए कि इसमें कुछ बदलाव है या नहीं। नील क्लास के बाहर से बहुत ज्यादा शोर सुन सकता था और जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है। नील उनकी रिएक्शन का एनालाइज करने के लिए क्लास को एक बार स्कैन करता है और ये कोई नई बात नहीं थी, वो इस तरह के रिस्पॉन्स का आदि हो चुका था। लेकिन अचानक नील की आंखें कहीं रुक जाती हैं। नील ऐसा बिल्कुल महसूस कर रहा था कि उसकी दुनिया घूम रही है और इसका रीजन उसके सामने ही था। वो बेहद अट्रैक्टिव है, एक खूबसूरत एंजल, एक खूबसूरत लड़की। नील उसे एक क्रीप की तरह घूरकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने अपनी नजर बोर्ड की ओर घुमाई थी और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी आखिरी बेंच पर बैठी उस छोटी जादूगरनी को देखकर उसका दिमाग धुंधला हुआ जा रहा था। कमेंट करें, लाइक करें, मुझे फॉलो करें, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए स्टिकर्स भेजें, स्टोरी को कंप्लीट पढ़ने के लिए मेरे सुपरफैन बने। आप मेरी सारी कहानियों को कंप्लीट पढ़ सकते हैं मेरा सुपरफैन सब्सक्रिप्शन लेकर।